श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की श्री अधिक मास महोत्सव की श्रील प्रभुपाद की सब गुरु जनों की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब लोग बड़े ध्यान से बोलना, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीर् उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। इन श्लोकों का अर्थ ऐसा है कि श्रीमद् भागवत की कथा करने के पहले हम नारायणम नमस्कृत्य नारायण को नमस्कार करते हैं। नरम चैव नरोत्तमम, नर यानी अर्जुन, नर नारायण भगवान के अवतार हैं अर्जुन और भगवान कृष्ण, तो उनको भी वंदन करते हैं। नरोत्तम यानी भक्त में संत लोगों को प्रणाम करते हैं। देवीम सरस्वतीम व्यासम यानी देवी सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवता है, विद्या देवता है, उसके द्वारा कृपा के द्वारा ये सब ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उसको भी वंदन करते हैं। फिर व्यासम व्यासदेव को वंदन करते हैं क्योंकि व्यासदेव जी ने ये सब लिखा हुआ है, उसके लेखक वो हैं। देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरयेत, इस तरह से सबका हम जय जयकार करते हैं। उसके बाद नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इसका मतलब है अभद्र यानी हमारे जीवन में बहुत सारा अभद्र चीज़ें हैं, अभद्र यानी अपवित्र अशुभ पाप जैसी, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो कष्ट वाली है, पीड़ा वाली है, अनर्थ है, इन लोगों को अभद्र कहते हैं। अभद्र यानी शुभ पवित्र काम। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु मतलब हमारे अंदर जितना भी अभद्र है, प्रायेषु मतलब ऑलमोस्ट 100% नष्ट हो जाता है। कभी होता है नष्ट वो? जब हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं। नित्यम भागवत सेवया, जब नित्य रूप में हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो हमारे जीवन में जितना भी अनर्थ है, जो नहीं होना चाहिए वो है, वो ऑलमोस्ट मतलब प्रायेषु 99.99% खत्म होता है। तो बचा हुआ वो पॉइंट का क्या करना है? बचा हुआ पॉइंट के लिए आपको जप करना है और गुरु की शरण लेनी है, और आपको कथा सुनते समय जप नहीं करना है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, आगे क्या बताएं? भगवतीर उत्तम श्लोके, भागवत में जो श्लोक लिखे गए हैं उसको उत्तम कहा गया है। उत्तम का मतलब क्या होता है? उत्तम, तम यानी अंधकार, अज्ञान, अज्ञान का अंधकार, उस तम से उत्त यानी ऊपर उठाने वाला ये सब श्लोक हैं। उत्तम का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तम शब्द जो तम से, अंधकार से, अज्ञान से उठाता है उसको उत्तम कहते हैं। और भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, कि ऐसे उत्तम श्लोकों के द्वारा जिनका गुणगान किया जाता है उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। तो भगवती क्या बताया हमने, नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करने से क्या हो रहा है, रोज भागवतम सुनने से हृदय में भक्ति स्थापन हो जाती है। और वो स्थापन कैसे होती है, नैष्टिकी, जिसको वहां से कोई उठा नहीं सकता है। ये छोटा सा पौधा है, लगा दिया है, कल बच्चा आएगा उसको उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन एक बार उसका पेड़ बन गया पीपल का, तो बच्चा क्या, सौ आदमी भी उठा सकता नहीं, क्योंकि वो एकदम इतना स्थिरता से बैठ गया है उधर कि उसको निकालना आसान नहीं। हमारे लोकल भाषा में क्या कहते हैं, उखाड़ना, उसको उखाड़ नहीं सकते। ऐसे न उखाड़ने वाली भक्ति जिसको हम उखाड़ नहीं सकते, पदच्युत नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, इस प्रकार की भक्ति हृदय में स्थित हो जाती है जब हम भागवत का श्रवण करते हैं। इसलिए इस बातों को याद करने के लिए श्लोकों को दोहराते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी होगा, श्लोक बोलते होंगे, हम भी बोल रहे हैं, क्या बात, क्या अर्थ है उसका, हर चीज का अर्थ है, हर चीज, हर वो हाथ हिलाते ना ऐसे, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो हर चीज का एक अर्थ होता है ना, ऐसे करेंगे तो एक अर्थ होता है, ऐसे करेंगे दूसरा अर्थ होता है, हर चीज अर्थपूर्ण है अगर आप जानते हैं तो। देखना भी अर्थपूर्ण है, अगर मैं ऐसे देखूंगा तो एक अर्थ हो गया, दूसरा अर्थ हो गया। तो हमारा जीवन बहुत अर्थपूर्ण है, हर एक चीज अर्थपूर्ण है क्योंकि हम मनुष्य हैं। बाकी जानवरों के जीवन में हर चीज अर्थपूर्ण होगी इसका कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपके जीवन की हर चीज इंपॉर्टेंट है और अर्थपूर्ण है। तो कलयुग के आरंभ में भगवान तो सब जानते हैं ना, त्रिकालज्ञ है, मतलब तीनों कालों का भविष्य, भूत और वर्तमान सब के बारे में जानते हैं। तो वो देखते हैं आगे के कलयुग जब आएगा तो सब लोग ना भूल जाएंगे, उनको भी कल नाश्ता क्या किया आपने, सबको याद नहीं आएगा, परसों सवेरे कौन सा ड्रेस पहना था आपने, याद नहीं आएगा, लास्ट संडे में किधर थे आप सुबह, नहीं याद आएगा, अनलेस कुछ संडे में कोई भयंकर घटना हो गई तो आपको याद आएगा। ऐसा रूटीन में आपको पूछेंगे कि सब्जी कौन सी थी लास्ट संडे मॉर्निंग में, तो आपको नहीं याद आएगा। ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें भी याद नहीं रहती हमको, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम का नॉलेज, बहुत पढ़ा है आपने, एग्जाम लिखने बैठेंगे उसको याद ही नहीं आते, डिस्टिंक्शन के ऑप्शन गए थे और फिर काठावर पास हो नाले पर। तो भगवान जानते हैं कि कलयुग के लोगों की जो स्मृति है वो बहुत कमजोर होगी। समझो अभी आपको अपने टीचर देखते हैं कि ये स्टूडेंट है ना वो कम्युनिटी सब्जेक्ट में बहुत कमजोर है, तो उसको छोड़ देंगे ऐसे क्या, ठीक है अरे तो क्या उसमें, नहीं, जहां पर आप कमजोर हैं वहां पर उसको आप ट्यूशन देंगे, आप एक्स्ट्रा आवर बिठाएंगे, आपसे पढ़ाई करवा के लेंगे, कैसे नहीं आता है आपको, देखो आप इसको पढ़ा करो। जैसे मेरे एसएससी में ना मुझे बहुत डर था कि हिंदी विषय में सब्जेक्ट में कम मार्क मिलते ना, मराठी हिंदी इंग्लिश में 100% मार्क लाना बहुत मुश्किल है, मैथमेटिक्स है तो 100% मार्क मिल सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में मिल सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा हम लोग मार्क खा सकते हैं। अगर आपको रैंक लाना है बहुत तो एक एक लैंग्वेज का मार्क भी वो बहुत कीमती हो जाएगा। तो हमको लगा था कि हिंदी में ना हम थोड़ा सा मार्क खा सकते हैं, तो हिंदी का इतना पढ़ाई किया ना ध्यान लगा के, तो महाराष्ट्र में थर्ड रैंक आया हमारा हिंदी में। आज की जो हिंदी है वो उसी का परिणाम है, 78 साल में जो 1978 में जो हिंदी में मेहनत की थी ना उसका लाभ आज भी हो रहा है, कथा बोलने में और कहीं संपर्क करने में, लिखने में, व्याकरण में सब। तो कोई भी आपने जो मेहनत जीवन जिंदगी में की है ना, खास करके विद्यार्थी दशा में, कभी वेस्ट नहीं होती। विद्यार्थी दशा में आपने जो भी दिल लगाकर पढ़ा है, समझा है, वो आपको जीवन भर काम आएगा। समझे आप शादी करके आप रसोई सीख रहे हो, उस समय विद्यार्थी दशा है ना आपकी, कुकिंग वाली, बाकी तो कुकिंग बाकी पढ़ाई होगी लेकिन अभी कुकिंग की पढ़ाई चल रही, उसमें जो मन लगा के सीखेगा ना उसको वो रेसिपी जिंदगी भर याद आएगी जो भी दिल लगाकर पढ़ा है। तो उस तरह से लोगों की कमजोरी भगवान ने देखा कि इनको याद ही नहीं रहेगा, तो भगवान ने छोड़ नहीं दिया उसको, उन्हें कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो भगवान जब कुछ करते ना तो बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ काम करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि कुछ याद करना है और इनको याद रहता नहीं है तो क्या करना चाहिए, मैं सबको लिखवा दूंगा उसको सब कुछ, ताकि आपने आज पढ़ा और कल भूल गए दोबारा उसको देख सकते हैं, खोल के क्या था वो दोबारा याद कर सकते, कल पढ़ा फिर परसों भूल गए तो परसों भी खोल सकते हैं उसको, 10 साल के बाद में फिर याद नहीं आ रहा 10 साल के दोबारा खोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसको, है ना। बुक का वैल्यू क्या होता है, ये बुक का वैल्यू क्या है, आपका टेक्स्ट बुक का वैल्यू क्या है, कभी भी आप उसको रिफर कर सकते हैं। डिग्री भी ज्वाइन करके, कॉलेज ज्वाइन करके, जॉब ज्वाइन किया, 10 साल एक्सपीरियंस लिया, वापस वो ओबी गायनोकोलॉजी आप पढ़ सकते हैं खोल के, क्या था वो पढ़ सकते हैं, किताब का वो वैल्यू होता है। इसलिए लिखने वाले एक व्यक्ति का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वो एक बार लिख देता है तो जिंदगी भर आप उसका पढ़ाई कर सकते हैं। विश्व में जितनी क्रांतियां हुई है वो किताबों के माध्यम से हुई है, फ्रेंच राज्य क्रांति, जितनी भी राज्य क्रांति हुई है ना किताबों के माध्यम से हुई, किताब लिख लिख के उसको प्रचार किया गया, 10,000 मील तक किताबें गई हैं जहां आप नहीं पहुंच सकते। मुझे वो बोलना है सब दुनिया के लोगों को, लेकिन सब दुनिया के लोगों के पास मैं पहुंच नहीं सकता हूं तो मेरी किताब वहां पहुंच जाती है, तो मेरे ना होते हुए हजारों लोग किताब पढ़ते हैं और प्रभावित हो जाते हैं, मैं नहीं गया उधर तक लेकिन मेरे विचार पहुंच गए किताब के माध्यम से। तो भगवान ने सोचा कि जो भी वैदिक ज्ञान है, जो भी हमको और आपके लिए आवश्यक है उसको लिखना चाहिए। तो भगवान के ना 6 ऐश्वर्य हैं, उसमें से 1 ऐश्वर्य ज्ञान। भगवान सुंदर भी है, धनवान भी है, वैरागी भी है भगवान, बहुत बलवान भी है बहुत, और बहुत ज्ञानी भी है। तो अपना ज्ञान का उन्होंने अवतार उत्पन्न किया, उनका नाम क्या है, व्यासदेव, वेद व्यास। तो भगवान के ज्ञान के अवतार है, जन्म कैसे हुआ उनका, पराशर मुनि और सत्यवती देवी का संबंध से भगवान व्यासदेव का जन्म हुआ, और जन्म से ही विरक्त संत थे। नारद मुनि की मुलाकात है उनकी, हाँ बहुत अच्छी कहानी है, आप अपने बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, सबको बता सकते हैं, बहुत सुंदर कहानी। तो वो व्यासदेव को नारद मुनि जी मिले जो उनके गुरु ने, उन्होंने गुरु स्वीकार किया उनको, और नारद मुनि ने उनको फिर आदेश दिया कि आपकी सेवा ये है कि आपको जितना भी ज्ञान है वो सब लिखना है आगे आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए, उनके प्रति करुणा के आधार पर, दया से आपको लिखना है। तो आप लिख रहे हो लेकिन आपको पता है कि मैं किसी व्यक्ति के आनंद के लिए और कल्याण के लिए लिख रहा हूँ, लिखना एक बात है लेकिन वो भाव से लिखना दूसरी बात है, करुणा से, प्रेम से, उनके प्रति जो आपको चिंता है उसके वजह से आप लिखो। तो व्यासदेव ने वो आदेश स्वीकार किया और वो कहाँ गए, बद्रीनाथ गए, सबसे ऊंची जगह पर गए जहाँ बद्री विशाल भगवान नारायण जी निवास करते हैं, और उन्होंने गणेश भगवान को बुलाया, भगवान गणेश जिनको हम पूछते हैं ना गणेश जयंती गणेश उत्सव में, उनको बुलाया और वो कहा कि मैं जो भी बोलूँगा वो आपको लिखना है, और एक कंडीशन है उसके अंदर, मैं जो कुछ बोलूँगा, अभी वाक्य नहीं बोलेंगे श्लोक बोलेंगे ना, जो बोलूँगा वो जब आपके समझ में आएगा तब आपको लिखना है। ऐसे ही वो क्या कहते हैं ना, पीए का काम नहीं करना है आपको, पीए है आप लेकिन केवल सुना लिखा बाकी क्या लिखा है मेरे को क्या मतलब, ऐसा नहीं, यू आर नॉट अ स्टेनोटाइपिस्ट, आपको समझना भी है वो। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ताकि उनको अगला श्लोक बनाने में टाइम मिले, तब तक ये सोचता रहेगा तब तक मैं दूसरा श्लोक कंपोज करूँगा, एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि गणेश जी भी बहुत महान देवता हैं, बहुत ही महान देवताओं में से एक हैं, और वही बड़े ज्ञानी और बड़े परम भक्त हैं भगवान के, शंकर जी के बहुत ही शक्तिशाली प्रभावशाली पुत्र हैं, बहुत ही श्रेष्ठ काम इस दुनिया में करते हैं। जैसे कि बहुत सारे मंत्री होते हैं, लेकिन गृह मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट, सुरक्षा मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण खाता है मंत्री मंत्रालय। उस तरह से गणेश जी के काम है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम, विघ्न विनाशक। वैसे वो बड़े ज्ञानी भी हैं, तो उनको ये सारा ज्ञान सर्वप्रथम प्राप्त हुआ वेद व्यास जी से, क्योंकि वो बोले रहे हैं और पहला सुनने वाला गणेश जी भगवान है। तो इस तरह से एग्रीमेंट हुआ, एक गुफा में ये बैठे, अभी भी गुफा है वो हिमालय में, आप कभी जाएंगे यात्रा करने के लिए तो आपको दिखा सकते हैं। वो ऐसे नहीं बैठे थे, एक गुफा में वो बैठे हैं, अगले गुफा में दूसरे बैठे हैं। तो जरूरी नहीं कि माइक्रोफोन लगा के वहाँ स्पीकर लगाया वहाँ सुन रहे हैं, यहाँ से चिंतन हो रहा है, वहाँ हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। उसको कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की। यहाँ पर जो प्रकट हो रहा है तो वहाँ पर प्रकट हो रहा है। इस तरह से वो दिव्य तरीके से ये ज्ञान बताया गया, इसे समझना जरूरी है। हमारे टीचर्स आते हैं क्लास में, तैयारी करके आते हैं, फिर आपके सामने बोलते हैं, आप उसको सुनते हैं, कभी नहीं सुनते, कभी सो जाते हैं, कभी और कुछ सोचते रहते हैं, और टीचर बोलते रहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है आप लोग कहीं कुछ सोचते होंगे, या आपका मन कहीं और होगा, या कुछ लोग सुनते होंगे, ये सब मुमकिन है। इतना धनी होने पर भी ध्यान यहाँ वहाँ हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि गणेश जी का ध्यान कितना एकाग्र होगा। ना माइक्रोफोन लगा है, ना स्पीकर लगा है, ना वो सो रहे हैं, ना कि भाई उठो भाई उठो, हो ना आप जग जग रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ अभी भी, अभी वो 8 आवर ड्यूटी खत्म नहीं हुआ है। इस तरह से एक एक श्लोक का उच्चारण करके गणेश जी ने उसको मोर पंख से भोजपत्र को उतारा। हमारे साथ कंप्यूटर में बैठ के टाइपिंग नहीं कर रहे थे, हाथ से उतार रहे हैं, मोती जैसे अक्षरों में उतार रहे हैं। और वेदव्यास इतने इतने बुद्धिमान थे, समझो अभी आप एक बेस्ट कुक हो, आपको पंजाबी भी आता है, साउथ इंडियन भी आता है, महाराष्ट्र भी बनाने को आता है, कर्नाटक का भी आता है, समझो आप चार में एकदम स्पेशलिस्ट हो, तो आप कोई विद्यार्थी आपको पास पढ़ने को आएगा तो ऐसा नहीं कि आप एक एक बार इडली सिखाया, फिर शाही पनीर सिखाया, उसके बाद में सांभार सिखाया, उसके बाद में राजस्थान का और कोई सब्जी सिखाया, नहीं। आप क्या करेंगे, चलो हम पहले पंजाबी फिनिश करेंगे, तो पंजाबी पूरा हो जाएगा, फिर उसका एक बाजू में रखेंगे, फिर महाराष्ट्र शुरू करेंगे, ताकि पढ़ने वाले को भी एक माइंडसेट बनेगा ना। ऐसा नहीं कि कभी पनीर की बात करो, कभी इडली की बात करो, कभी सांभार की बात करो, कभी किसकी बात करो, ऐसा नहीं ना, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो व्यासदेव भी बड़े बुद्धिमान ज्ञानी हैं, उन्होंने सारे ज्ञान को ऐसे विभाजित किया सब्जेक्ट वाइज। हमारे मेडिकल में कैसे होता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, एक सब साथ में सिखाते, सबके एक एक करके सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको सब आपको ध्यान में आएगा। वैसे उन्होंने पहले वेद लिखा चार भाग में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चार मुनियों को दे दिया कि ये आपका अभी सब्जेक्ट है, इसको आप पढ़ाएंगे, ये आपका जिम्मेदारी है। जैसे हम लोग है ना मेडिकल, सर्जिकल, साइकेट्री, कम्युनिटी, अलग अलग टीचर उसको पढ़ाते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, वो लिखा। फिर उन्होंने पुराण लिखे, पुराण का मतलब क्या होता है, इतिहास, मतलब स्टोरीज। फिर उन्होंने उपनिषद लिखे, मतलब फिलॉसफी, कि आप कौन हो, भगवान कौन है, आपका रिश्ता क्या है, कैसे बनाना है उसको, नॉलेज, यानी कि फिलोसॉफिकल नॉलेज, तत्व ज्ञान। बाद में और आरण्यक, इतिहास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरे जितने ब्रांचेस हैं नॉलेज के तो सब लिखे। उसमें आयुर्वेद भी लिखा, धनुर्विद्या, जो भी नॉलेज है, ज्ञान कह सकते हैं उसको, जैसे आप कपड़ा सिला रहे हैं, दर्जी है, सब कुछ जिसके अंदर दिया हुआ है, जीवन चलाने का शास्त्र भी, भगवान को प्राप्त करने का शास्त्र भी। ऐसा नहीं कि आप MBBS में गए तो MBBS खाली मेडिकल ही पढ़ रहे हैं, नर्सिंग नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन राज दरबार चलाना कैसे है, राज्य धर्म, वो भी है इसके अंदर। फिर उन्होंने महाभारत लिखा, और महाभारत में क्या नहीं लिखा, एवरीथिंग इज देयर, एक कहानी के रूप में सब कुछ सिखा दिया उसने, हर चीज में। इस तरह से सब कुछ लिखा जो लिखना चाहिए, जो पता है, क्योंकि वो ज्ञान के ही अवतार थे, तो ज्ञान में कोई कमी नहीं उनके अंदर, लेकिन वो सारा ज्ञान उन्होंने उनकी तरफ से उतार दिया, मतलब जॉब कंप्लीटेड। लेकिन लेकिन क्या, जब कोई शिष्य अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता है ना, तो उन्हें एक संतुष्टि प्राप्त होती है अंदर से। जैसे आपने समझो शाही पनीर सब्जी बनाई और आपका सब कुछ था जो चाहिए था उसके लिए, प्रचुर मात्रा में था, अच्छी तरह से आपने उसको न जलाते हुए ठीक से प्रेम से ध्यानपूर्वक बनाया, तो उसको जब बन के आपके सामने आएगा ना, आपको एक मन में होता है कि हाँ ये बढ़िया बनाए। हर व्यक्ति को होता है, महाराष्ट्र में आपको पता चलता है कि ये आलू की सब्जी ना ऐसे दिख रही है तो मतलब वो ठीक है, अभी चखना चला बाकी है बस, लेकिन एक आइडिया आता है कि दिस इज ऑल राइट। वैसे उनको अनुभूति नहीं हुई, इतना सारा ज्ञान लिखने के बाद, इतनी कुशलता के लिखने के बाद, इतना वर्गीकरण करने के बाद, इतना ढंग से करने के बाद भी उनको समाधान प्राप्त नहीं हुआ, तो भगवान के ज्ञान के अवतार है, उनको साधारण व्यक्ति नहीं है। उनको ये पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है, कुछ बाकी रह गया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो दुखी हो गए। और नदी है ना सरस्वती, वहां पर है वो, उसके किनारे में जाके बैठ गया और शोक करने लगे कि क्या गलत हो गया, कहां मैं कम पड़ा, क्या त्रुटि रह गई। तो सोच रहे थे, देखो प्रामाणिक भक्त का ये लक्षण है। अभी समझो हम आपको कोई दिखा देंगे, क्या मैडम आप ऐसा करते हो, इतना गलती करते हो, तो आप तुरंत बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं कर रहे, वो आर्गुमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जस्टिफाई करेंगे उसको, तुरंत ऐसा नहीं बोलेंगे हाँ सर सॉरी मैं अगली बार ठीक करूंगी इसको। तो एक नम्रता का लक्षण है, आपको पता है कि वो दोष है, लेकिन मुझे बताया जाए वो अहंकार को सहन नहीं होता है। अभी इतने बड़े ज्ञान के अवतार, इतना बड़ा शास्त्र लिखा, तो बोलते थे अरे इतना तो लिखा ना, क्या है इसमें और कितना लिखूं, सब कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है ना, अभी आपको दे दिया मैंने, आप पढ़ो उसको भी। नहीं, परिपूर्णता चाहिए उनको, गुरु की संतुष्टि चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए कि यस बेटा आपने वत्स आपने बढ़िया काम किया। वो समाधान नहीं मिल रहा था, इसलिए वो नम्र होकर, हाँ जैसे आपके पास अगर कोई 10 PhD वाला विद्यार्थी हो और वो रो रहा हो कि मुझे ना ये पता नहीं है, बोलेंगे 10 PhD आपने कर, इतने ज्ञानी इतने पंडित हैं आप, लेकिन वो नम्र होगा तो बोलेगा ये पास मुझे पता नहीं है, मुझे वो पता करना है, मुझे वो सीखना है। वो एक नम्र विद्यार्थी का लक्षण है कि वो और भी आगे पढ़ेगा और भी ज्ञान प्राप्त करेगा। तो इतने ज्ञान का अवतार होने के बाद भी वो शोक कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और रो रहे हैं, गुरु जी को पुकार रहे हैं, तो वहाँ से गुरु जी नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं नदी के किनारे सरस्वती के। वो कहते हैं वत्स क्या हुआ, इतने बड़े ज्ञान के अवतार हो और रो क्यों रहे हो, थोड़ा मजाक हो जाता है, कहता ना अरे आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हो। लेकिन वो कहते हैं गुरु महाराज विनोद का समय नहीं है, बहुत मैं बहुत दुखी हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे कार्य में आपकी सेवा में कहां कमी रह गई, मुझे आप कृपा करके बताइए, मैं उसको पूर्ण करना चाहता हूं, मुझे अनुभूति हो रही है कि कुछ कमी है। तब गुरु महाराज गंभीर हो गए, नारद मुनि जी, उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मैं जानता हूं कि आपने सब कुछ लिखा है जो लिखना चाहिए, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो आपने लिखा नहीं है, जो जीव के लिए कल्याण के लिए आवश्यक है और आपने लिखा नहीं है, लेकिन सारे शास्त्र अधूरे हैं जब तक उसमें परम भगवान श्री कृष्ण का गौरव नहीं किया जाता है। सारे शास्त्र अधूरे हैं, सारे फिलॉसफी अधूरी है, सारे पुराण इतिहास स्टोरीज अधूरी हैं, अगर आप उसमें भगवान का गौरव गुणगान लीला कीर्तन, लीला कीर्तन का मतलब है लीला का गुणगान, वो अगर नहीं किया है तो सब कुछ होते हुए बेकार है। वो आपने सब पनीर उसके अंदर ग्रेवी टमाटर क्या चाहिए सब डाला है, नमक नहीं डाला है उसके अंदर, कितना भी बढ़िया माल डाला होगा उसके अंदर, लेकिन वो नमक अगर दिखता भी नहीं, वो दिखता है क्या, वो अदृश्य है वो, लेकिन वो है तो वो पनीर को स्वाद है, और सब कुछ बढ़िया होने पर भी अगर नमक नहीं है तो उसमें स्वाद नहीं है, ना उस तरह से ये भगवान की लीलाओं का गौरव है कि सब कुछ होने पर भी स्वाद नहीं आएगा उसके अंदर और संतुष्टि नहीं आएगी, इसलिए अभी आप जाकर भगवान के गुणगान करो, और केवल भगवान का नहीं, भगवान जिन पर प्रेम करते हैं ऐसे उनके प्रिय भक्तजनों का भी गुणगान करो। इसका मतलब भक्त चरित्र लिखो और भगवान का चरित्र लिखो। तब ये आज्ञा के पाते ही बहुत संतुष्ट हो गए, कि चलो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने बीमारी का निदान किया, डायग्नोसिस किया और ट्रीटमेंट बताया, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। ऐसा आपको लगेगा ना कि हाँ आई वॉन्ट टू, सही डॉक्टर के पास गया मैं, संतुष्ट होकर फिर अपनी गुफा में लौट के आए। और फिर उन्होंने क्या लिखा, फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा। वो अंतिम शास्त्र है जो उन्होंने लिखा, लास्ट प्रोडक्शन एंड द बेस्ट प्रोडक्शन। जैसे आपको आम का पेड़ है, 5 साल से जल दे रहे हैं उसको, आप गांव में लगा थे ना, आप 1 साल हो गया बच्चा, एक से फर्स्ट बर्थडे हो गया, सेकंड बर्थडे हो गया, 5वां बर्थडे हो गया, फिर भी वो पेड़ को फल नहीं आता है, अब कॉलेज देना ही है उसको, देते रह रहे आप। फिर पहली बार जब फल आता है ना, वो कच्चा कच्चा आके गिर जाता है, प्री मैच्योर बोलते हैं उसको, है ना। उसके बाद में फिर उसको फल आने लगते हैं, फिर आप रुकते हैं, बहुत दिख रहे हैं हरे हरे, लेकिन आप उसको आने लगा, आप वेट करते हैं, उसको पिला होने दो, फिर उसको उतार दें, फिर उसका छिलका निकाल दें, गुटली निकाल लेते हैं, और जो नरम नरम जो चीज़ है। ज़्यादा आपको मैं बहकाऊंगा नहीं इस कथा में, क्योंकि आपका मन फिर जाएगा मार्केट में। तो वो आम आपको प्राप्त होता है। तो आम क्या है, वो पेड़ का आखिरी प्रोडक्शन है। वो पेड़ ने पहला ब्रांच भी दिया, फिर और कमज़ोर ब्रांच भी दिया, बहुत नाजुक ब्रांच भी दिया, उसके आपने पत्ता दिया, वो कोमल थे, वो फिर वो पक्व हो गए, वो सब कुछ हो गया, हाइट बढ़ गई, सारे प्रोडक्शन ट्री का हो गया। लेकिन ट्री का सार किसमें रहता है, जो आप लेने योग्य होता है आपके लिए, वो क्या होता है, फल होता है। फूलों के पेड़ में फूल होता है, जो उसके लिए आप वेट करते हो, जिसके लिए पेड़ लगाया है वो फल या फूल के लिए है ना। तो जब तक वो फूल या फल पैदा नहीं होता है, तब तक पेड़ की परिपूर्णता नहीं होती है। पेड़ को आप बोल सकते नहीं कि ये परिपूर्ण है। तो फल जो है ना, वो पेड़ का अंदर क्या सार है, वो फल में प्रकट होता है। जैसे करेले के अंदर क्या सार है, वो करेले के सब्जी में प्रकट होता है, बेलू में। और आम के फल में आम लगता है, सफरचंद में सफरचंद लगता है, चीकू वाले में चीकू लगता है। तो आप फल से क्या कहते हैं, फले न परिचये, फल से आप उस पेड़ का परिचय कर सकते हो, देखने से भी, हाँ ये आम का पेड़, हाँ ये ना बेल का पेड़। वैसे वेद का अगर पेड़ होगा, वेद जो है अगर वृक्ष रूप में होगा, तो उसके बहुत सारे फल है, लेकिन सबसे परिपक्व फल कौन सा है, श्रीमद् भागवत। और जब उन्होंने भक्त चरित्र वर्णन करना शुरू किया, और फिर 9 स्कंद तक भक्त चरित्र का वर्णन किया, कौन कौन, बहुत सारे उसके अंदर, ध्रुव जी महाराज हैं, ध्रुव चरित्र है, प्रहलाद चरित्र है, कुंती चरित्र है, राजा परीक्षित का चरित्र है, भीष्मदेव का चरित्र है, ऋषभ देव भगवान का चरित्र है, प्रभु रामचंद्र का संक्षिप्त चरित्र है, क्या नहीं है उसके अंदर, सब महान महान जितने भक्त हैं, परशुराम भगवान का चरित्र है, बहुत सारे चरित्र हैं जो हमें पढ़ने के बाद में भगवान के चरित्र पढ़ने के लिए तैयार कर देते हैं। डायरेक्टली भगवान का चरित्र नहीं दिया है, भक्तों का चरित्र दिया है, उन महान व्यक्ति के लिए किस किसने भजन किया उसका वर्णन करके, फिर आपको उत्सुक हो जाते हैं वो कौन है भगवान, वो फिर भगवान का चरित्र शुरू होता है 10वें स्कंद में। और फिर 11वें और 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन दिया है कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। आपको बहुत आनंद होगा सुनकर कि आज जो कुछ हो रहा है ना दुनिया में, वो सब भागवत में दिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं एक बताता हूँ, आपको यकीन हो जाए इसलिए, कि लड़कियाँ बाल काट काट कर छोटे करेंगी फैशन के रूप में, और लड़के लंबे लंबे बाल करके फैशन के रूप में चलेंगे, यस और नो? अभी आजकल लड़के पूने लगाते हैं और लड़कियाँ जितना हो सके उतना बॉयकट शॉर्टकट ये करने का प्रयास करें। और एक चीज़ लिखी है अनंत चीज़ों में कि माता अपने बालक का वध करेगी। अरे अरे ऐसे कैसे हो सकता है, माता तो कितना प्रेम करती है बालक के। नहीं नहीं ये गलत है, ये भागवत में ना ये गलत लिखा है, वो ऐसे माता नहीं वध कर सकती अपने बालक। बाद में आप गहराई में सोचोगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये तो सही है, एबॉर्शन क्या चीज़ है, एबॉर्शन पहले नहीं होती था, अभी होने लगा है। माता अपने स्वार्थ के लिए गर्भ में ही अपने बालक को मार देती है, बोलते मुझे करियर करना है, मुझे फिगर मेंटेन करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसको रोग है बीच रंग पेट के अंदर, तब मुझे यकीन आया कि कलयुग में माता अपने वो बच्चे का वध कर दिए, क्योंकि तो भागवत में लिखा है वो झूठ नहीं हो सकता है, व्यासदेव ने लिखा है, ऐसा तीर नहीं मारा है हवा में। कलयुग में व्यक्ति मतलब पुरुष और स्त्री केमिकल यानी रसायन की नशा करेंगे, कर रहे कि नहीं कर रहे, चरस गांजा ब्राउन शुगर हीरोइन अल्कोहल सिगरेट दारू, हाँ वो क्या है सब ज्यादा करेंगे, पहले भी करते थे लोग लेकिन और ज्यादा करेंगे। कलयुग में सब लोग त्रस्त रहेंगे हमेशा, जब देखो परेशान, जाओ स्टेशन में मीरा रोड पे जाओ, हजारों लोग खड़े रहते हैं, सबके चेहरे देखो ऐसे लटके हुए रहते, परेशान, किसी में सद्गुण नहीं है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, आयु बहुत कम है, ज्ञान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, पाप करने में ज़्यादा तुले हुए हैं, झगड़े में तुले हुए हैं, ढोंगी है, ये सब सच है कि झूठ है, ये सब लिखा है उसके अंदर। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन युगे जनहा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य विपद्रुता, एग्जैक्टली लिखा हुआ है, आप पढ़ो और देखो, अपने को भी देखो दूसरों को भी देखो, सब प्रमाण मिलेगा आपको उसका, ऐसा शास्त्र है। तो फिर बाद में एक उद्धव गीता का प्रसंग आता है उसके अंदर, एक गीता भगवान ने अर्जुन को बताई, एक गीता फुर्सत में उद्धव को बताई। फुर्सत में क्यों कहा मैंने, अर्जुन के पास समय नहीं था, वो बीच वॉर में खड़ा था, अभी कितना दिन प्रवचन दे उसको, धनुष लेके खड़ा है वो, इतना जल्दी हो सके शॉर्ट में बताना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है, अभी एग्जाम का एक घंटे का पेपर है, तो पूरा टेक्स्ट बुक पकड़ा दिया तो कैसे पढ़ेंगे आप, अब बोलेंगे ये चार प्रश्न पढ़ो अभी आने वाला है एग्जाम में, है ना, शॉर्ट और स्वीट, क्या जरूरी है उस समय, वो दिया है भगवद गीता में, उसको एक टाइम लिमिट था। लेकिन उद्धव जी जब आए, भगवान जा रहे हैं दुनिया छोड़कर, तो उद्धव जी आए बोले मैं दुखी हूँ बहुत, आप जा रहे हो, तो भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया, उसको उद्धव गीता कहते हैं, और वो 12वें स्कंद में आता है, 11वें स्कंद में आता है। सर सुंदर शास्त्र है एकदम, परफेक्ट है एकदम। और बाय द वे माय डियर फ्रेंड्स, वो आप और हमारे लिए लिखा है। आप कहेंगे नहीं नहीं वो जो है ना विद्यार्थी कॉलेज है ना उनके लिए लिखा है ये हम और आप अगर मनुष्य अपने आप को मानते हैं तो उनके लिए लिखा गया, वो आप पढ़े इसलिए लिखा गया है, नॉट फॉर कैट्स एंड डॉग्स। और लिखा है उसके अंदर कि श्रीमद् भागवत में कोई भी मल नहीं है, कि कोई दोष नहीं है उसके अंदर, ऐसा नहीं लिखा है कि आप ये करोगे तो अच्छा पति मिलेगा, वो भी नॉलेज है शास्त्र में, हाँ वो भी सब है हमारे वेदों में, सब कुछ है, अच्छा पति चाहिए तो क्या करना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो क्या करना चाहिए, अच्छा संतान चाहिए तो क्या करना चाहिए, हाँ बहुत सारा चीज लिखा है, आरोग्य चाहिए तो क्या करना चाहिए, ऐसे भी शास्त्र है। तीन प्रकार के शास्त्र होते हैं, सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी। अगर आपको कोई किसी को टोना करना है उसका भी शास्त्र है तंत्र मंत्र का, उसको तमोगुणी शास्त्र कहते हैं। दुनिया में बहुत पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, सौंदर्य कमाना है, कीर्ति कमानी है, तो उसका भी एक शास्त्र है, रजोगुणी शास्त्र बोलते हैं। क्या क्या प्राप्त करना है, कीर्ति प्राप्त करनी है, पुत्र प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, उसके भी विधि बताए गए हैं, लाभ वाले सेल्फिश। और सत्वगुणी शास्त्र भी है, ये सब छोड़ के स्वर्ग में जाना है, इधर छोड़ के अगले लोक में जाकर एंजॉय करना है, उसके लिए भी कर्मकांड की विधि बताई गई। लेकिन इन तीनों के ऊपर एक शास्त्र होता है, वो इसके तीनों से कोई संबंध नहीं उसका, यानी कि दुनियादारी से कोई संबंध नहीं उसका। क्या संबंध है उसका, आत्मा इन सारे बंधनों से कैसे मुक्त होकर भगवान से मिल सकता है, वो दिव्य शास्त्र है। उसको पति पत्नी मिलेगा, धन मिलेगा, कोई मतलब नहीं उसे, तो चलते रहेगा उसका संसार। लेकिन ये सब संसार से छुटकारा प्राप्त करके भगवान की प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करके भगवान के चरणों में भगवान के धाम में कैसे प्रवेश करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। फिलहाल आपको अभी परेशानी है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे पति चाहिए, वो सब ढूंढ रहे हैं आप उसको, लेकिन सब आपकी पूर्ति हो गई, पति हो गया, बच्चा हो गया, धन संपत्ति गाड़ी सब प्रॉपर्टी सब आप संतुष्ट हैं, तो आप बोलेंगे आगे क्या है, इसके आगे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भी नॉलेज चाहिए ना। आप उस स्थिति में आ गए और आगे का नॉलेज अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे आप। तो वो शास्त्र श्रीमद् भागवत है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, ये शास्त्र वो शास्त्र है जिसमें दुनियादारी का कोई लवलेश नहीं है। आपको डायरेक्ट नॉलेज मिलता है भगवान से कैसे जुड़ना है, बस। चाहे आप विवाहित हो ना हो, दुनियादारी के हो नहीं हो, संन्यास्त हो, विरक्त हो या गृहस्थ हो, किसी भी अवस्था में आप हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, हर अवस्था में, इच्छा वाले अवस्था में या इच्छा नहीं होने वाले अवस्था में, किसी भी अवस्था में हो, उस स्थिति में आपको भगवान को कैसे प्राप्त करना है ये उसमें दिया है। जैसे आप लोग विद्यार्थी हो, आप लोग विवाहित हो, हाँ, आप लोग बुजुर्ग हो, कुछ लोग टीचर हैं, कुछ लोग पिता हैं, माता हैं, अलग रोल में ना आप लोग सब लोग, लेकिन सबके लिए भी भागवत में ये नॉलेज दिया है कि आप जिस अवस्था में है उस अवस्था में कैसे भगवान से आप जुड़ सकते हो। इसलिए उसको अमलम पुराण कहा गया। उसका और एक नाम है परमहंस संहिता, यानी कि जो परम संत है भगवान के, उनके लिए भी उसके लिए अंदर मटेरियल है और आगे बढ़ने के लिए, और जो नया नया अभी तक भगवान को जानता भी नहीं है, खुद को भी जानता नहीं है, उसके लिए भी उसके अंदर गाइडेंस है। मतलब किसी भी अवस्था में आप उसको पढ़कर भगवान के साथ जुड़ सकते हो। और उसकी एक महानता है, वो ये महानता है कि जैसे ही आप श्रीमद् भागवत का पठन करोगे या श्रवण करोगे, उसी समय आपको श्री कृष्ण भगवान का सान्निध्य, उपस्थिति, संग का अनुभव प्राप्त होगा। भगवान अभी नहीं है, वो अपनी लीला करके चले गए हैं, लेकिन नहीं हाँ होते हुए भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपको तत्क्षण वो अपने उपस्थिति का अनुभव कर देते हैं। ये उसका और एक, क्योंकि उद्धव जी ने जब भगवान को बोला ना, भगवान आप जा रहे हो, मैं आपका सखा हूँ, आपका मित्र हूँ, आपका चचेरा भाई हूँ, आपका मंत्री हूँ, आपका सब कुछ हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मुझे आप ले जाइए अपने साथ, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, जहाँ आप जा वहाँ मुझे ले जाइए आप। उसी समय भगवान ने अपने आप को श्रीमद् भागवत में अर्पण कर दिया, प्रवेश कर दिया उन्होंने। जैसे नींबू का रस बना बनकर तैयार था, शक्कर डाल दिया उसके अंदर, शक्कर गई अंदर, दिखती क्या वो, लेकिन है, उसका स्वाद मिल रहा है आपको। उस तरह से श्रीमद् भागवत की ज्ञान में भगवान प्रवेश कर गए, इसका प्रमाण है भगवान ने। जब भगवान की रानियां भगवान को खो गए, भगवान चले गए ना वो, तो भगवान की रानियां रो रही थी बहुत, तो उद्धव जी ने उनको भागवत सुनाया और कहते हैं कि भगवान की रानियां बहुत रो रही थी, बहुत दुख कर रही थी कि हमारे पति देव अभी नहीं रहे, हमको उनका संग प्राप्त नहीं हो रहा है। परम भक्त थी भगवान की, वो भगवान परम भगवान, और वो परम भक्त थी, पत्नी बनकर आई थी, वो सहन नहीं कर पाई भगवान के विरह को। तो उस समय उद्धव जी ने, इतने बुद्धिमान थे वो, उन्होंने उनको भागवत सुनाया। एग्जैक्टली पता होता ना कि आपको डॉक्टर इंजेक्शन क्यों दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है, और डॉक्टर नोज कि इंजेक्शन कहाँ क्या काम करेगा, इसलिए वो दे रहे हैं। भागवत का प्रथम श्लोक का उच्चारण करते ही रानियों का दुख सब खत्म हो गया। अब दुख किस लिए कर रही थी, वो भगवान नहीं है ये दुख था उनको, और मैं कह रहा हूं दुख समाप्त हो गया, मतलब क्या हो गया, भगवान के होने का, अस्तित्व का अनुभव उनको हुआ। जिसके लिए रो रहे हैं, जो खो गया है वो मिल गया था, आप रोते रहोगे क्या, हो नहीं, आप तुरंत रोना बंद करोगे, क्योंकि जो खो गया वो मिल गया, तो जो खो गया इसलिए रो रहे हैं, उसकी अनुभूति उनको श्रीमद् भागवतम सुनने पहले श्लोक से ही हुई। और 30 दिन तक भागवत सुना, 30 दिन में पहले क्षण से एंड तक एक भी अश्रु रोए नहीं, वो वियोग के, भगवान के ना होने के अश्रु एक बार भी नहीं रोए। और आगे जाकर जब उनकी कथा आई ना भागवत में, उनकी कथा आती है ना, भगवान ने विवाह किए, रुक्मिणी से विवाह किया, यमुना से किया, लक्ष्मणा से किया, सत्या से किया, मित्रविंदा से किया, भगवान की 8 पत्नियों का विवाह का वर्णन विस्तार में दिया है, फिर भगवान ने 16,100 कन्याओं से और विवाह किया जरासंध के जेल में, उसका पूरा वर्णन दिया है। तो उन्होंने सभी लोगों ने, 16,108 पत्नियों ने अपने अपने रूप का दर्शन भी किया, साक्षात दर्शन किया, जैसे उनके सामने ड्रामा हो रहा है, कथा बोली जा रही है लेकिन उनको ड्रामा दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअल ड्रामा होते हुए नजर आ रहा है, समरस होकर देख रही थी वो। और फिर जब 12वां स्कंद पूरा हो गया तो वो उस रूप में विलीन हो गई और भगवत धाम चली गई, सब दुख समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, भगवान को प्राप्त कराने वाला शास्त्र है, आप उसका पठन करोगे ना, क्या बोला हमने, नित्यम भागवत सेवया, जो रोज एक श्लोक भागवत का पढ़ते हैं उनको रोज भगवान के संग का अनुभव होता है। और आगे क्या होता है, भक्तिर भवति नैष्टिकी, मैंने बताया ना कुछ बात, भक्ति हृदय में स्थित होती है और भक्ति हृदय में स्थित होने के बाद क्या होता है, भगवान वहां विराजमान हो जाते हैं। भक्ति भगवान को खींच के लाने का माध्यम है। भगवान नहीं भी आ रहे, आप कर्म कांड कर रहे हैं, आप और कुछ उपासना कर रहे हैं, कुछ तप कर रहे हैं, नहीं मिल रहे भगवान आपको, दान पुण्य कर रहे हैं, नदियों में स्नान कर रहे हैं, तीर्थ दान यात्रा कर रहे हैं, फिर भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है, अगर भगवान को खींच के लाना है तो भक्ति एक ही माध्यम है। श्री कृष्ण आकर्षणी, ऐसे भक्ति का वर्णन दिया गया है, भगवान को आकर्षित कर लेती है। भगवान को आकर्षित करना आसान नहीं है, क्या क्या दिखा के आकर्षित करेंगे, धन दिखा के करेंगे, धन तो उन्होंने दिया हुआ है, सुंदरता दिखाएंगे आप, मैं कितनी सुंदर हूँ, सौंदर्य भी उन्होंने दिया हुआ, मैं कितना ज्ञानी हूँ, देखो इतना वेद प्रकरण पंडित हूँ मैं, अरे वो उन्होंने दिया हुआ है। क्या ऐसी वस्तु है जो आपकी है, हाँ एक ही वस्तु आपकी है, वो आपकी भक्ति, जो आपका खुद का प्रोडक्शन है, जो आपके अंदर से प्रकट हो रहा है, और वही जो आपका खुद का है उसी को देखकर भगवान आकर्षित होते हैं। अगर आप पिताजी के पास गए, बोले पिताजी ये लो 5-star चॉकलेट, हैप्पी बर्थडे टू यू, पिताजी बोलेगा अरे कल पॉकेट मैंने दिया था ना, वो सेव करके तो लाया तुमने। लेकिन पिताजी ऐसा बोलते हैं क्या कभी, आप में से कोई ऐसे माता और पिता है जिसको आपने बच्चे ने आपको हैप्पी बर्थडे करके चॉकलेट दिया, कोई टॉय दिया, कोई चुम्मा दिया, हैप्पी बर्थडे मम्मी, आपने कहा क्या बड़ा काम किया, तो जन्म में मैंने दिया, सारा मेहनत तो मैंने किया, क्या इतना बड़ा किया तुमने, नहीं आप क्या बोलते हो, वो 5 रुपए का 5-star आप देखते नहीं हो, वो 5-star लाने के पीछे जो प्रेम है ना उसका, जो ध्यान से आपने बर्थडे का डेट याद रख के जाके खरीद के पैक करके राइट टाइम मॉर्निंग में उसने आपको मम्मी हैप्पी बर्थडे ऐसा दिया है, वो प्रेम है ना, वो माँ को भाता है, उससे माता जी आकर्षित हो जाती है और ऐसा गले लगता है मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा मुन्ना, हाउ स्वीट हाउ स्वीट, और 50 दोस्ती फ्रेंड लोगों को फ़ोन करके बोलेगी वो, आज ना मेरे पप्पू ने ना सुबह से मुझे हैप्पी बर्थडे बोला। अरे कौन सी बड़ी बात है इसमें, अरे कितने बच्चे देते हैं अपने माँ बाप, लेकिन जब आपका बेटा आपको आपके 5 रुपये इकट्ठा करके पॉकेट मनी सेव करके जब आपके बर्थडे पे लाके देता है तो आप उस चॉकलेट पे आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आपको उस पे प्रेम में इंटरेस्ट है, जिस प्रेम से आपने उसने आपको दिया है। तो भगवान भी आप क्या क्या कर रहे हैं उस पर प्रभावित नहीं होते हैं, आपका प्रेम अगर हृदय है तुरंत वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी भक्ति जो है ना वो श्रीमद् भागवत का पठन करने से हृदय में स्थित हो जाती है और उसको देखकर भगवान आपके हृदय में दौड़े चले आते हैं और आपके हो जाते हैं, जो किसी के नहीं होते हैं, जो ज्ञान से प्रभावित नहीं होते हैं, जो चमत्कार से प्रभावित नहीं होते हैं, आप कितना भी नाटक करेंगे उससे प्रभावित नहीं होते हैं, आप ढोंग करेंगे उससे फंसते नहीं हैं, वही भगवान दौड़ के आते हैं। आप यहां भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं और वो और आगे दौड़ रहे हैं, या तो आप खड़े हैं और भगवान आपके पीछे दौड़ रहे हैं, कौन सा आसान है इसमें। आपको प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, मुझे भी मिलना है, आपको मिलना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, कितना मुश्किल है मेरे लिए, हो सकता है इस जन्म में चांस ना आ जाए, हो सकता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में बैठकर सुबह 7:08:25 पर उसको लगता है कि मुझे मिलना चाहिए उसको, तो वो शाम 2 घंटे में मुझे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी उन्हें मिलना है मुझे, और वो इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनको 1 मिनट के अंदर मुझे मिल सकते हैं, तो क्या करना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए कि वो हमको मिलने की तमन्ना करें। इज इट इजी वे ना, इजी वे आउट, उसके पीछे भागेंगे तो और भागते रहेंगे वो। हमारे प्रभुपाद जी ना, उनके गुरुजी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो कहते हैं कि भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको देखने के लिए आ जाए। डोंट रन टू सी गॉड, लेट गॉड कम एंड सी यू, ऐसा कार्य करो कि आपको देखने के लिए आ जाए, तो वो कार्य भक्ति है और वो कार्य हमें करना चाहिए। बाकी कर्म उपासना सिद्धि सब करेंगे तो भगवान प्रभावित नहीं होते इससे। मुझे आपने ऐसे हवा में ऐसे एक सोना निकाल के दिखाया तो क्या लगता है भगवान प्रभावित होंगे उससे, अरे मैंने सोने की ऐसी कहानी बनाई है दुनिया में, टनों का सोना है जमीन के अंदर, आप क्या हवा में 1-2 किलो का सोना निकाल के दिखा रहे हो, हवा में विभूति निकाल के दिखा रहे हो, कोई भगवान को उसमें प्रसन्न नहीं होते ना आकर्षित होते हैं। लेकिन जो दिल से उनकी भक्ति करता है उनके दास बन जाते हैं। देखो आप अर्जुन को देखो, हाँ ये फोटोग्राफ में देखो क्या दिख रहा है आपको, तो भगवान है, भगवान उसके ड्राइवर बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? उन्होंने वो कुछ समय के लिए जॉब नहीं लिया था, 18 दिन के लिए 18 डे का पोस्टिंग था उनका कुरुक्षेत्र पर, तो आ गए बेचारे, वो कॉन्ट्रैक्ट था, क्या करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, बिकॉज अर्जुन उनके भक्त थे इसलिए उन्होंने अपने भक्त का ड्राइवर बनना पसंद किया। 18 दिन तक केवल ड्राइवर ही थे, मैंने युद्ध भी जिता के दिया उसको, ऐसे भगवान है। भगवान होते हैं भक्तों का दास बन जाते हैं। भक्ति ऐसी चीज है जो भगवान को भी वश करके दास बना देती है। हम लोग दास बनाने के लिए भक्ति नहीं करते, वो बन जाते हैं। इसलिए ये महीना है अधिक महीना, शॉर्टकट आपको है, बाकी जगह सब कट है लेकिन ये महीने में शॉर्टकट भगवान ने दिया है। दिवाली का समय है तो 1 पंजाबी ड्रेस पर 4 पंजाबी ड्रेस सेल होता है ना, कभी 1 पे 2, 2 पे 3 होता है ना, और कोई बोलेगा 1 पे 100, 1 पंजाबी ड्रेस बाय करो 99 फ्री, तो आप तो यकीन नहीं करेंगे पहला, लेकिन जाके देखेंगे हाँ मिल रहा है तो तुरंत आप जाएंगे सबको, भाई बहन, भाई भाभी, सिस्टर बड़ी छोटी सबको बोलेंगे जाओ भाई खत्म होने के पहले पहुंच जाओ, लिमिटेड स्टॉक है। वैसे ही अधिक मास भगवान का ना ग्रेट ग्रैंड सेल है, भगवान बोले इस महीने में आप कुछ करोगे ना तो आपको 16 लक्ष गुना लाभ मिलेगा उसका, आम तौर के अलावा 16 लक्ष 16 लाख टाइम्स, मतलब मैंने हरे कृष्णा बोला तो मुझे 16 लक्ष बार हरे कृष्णा बोलने का लाभ ऑलरेडी इधर जमा हो गया मेरा। 108 माला मणि का माला किया तो वो उतना मल्टीप्लाई हो गया, और 16 माला किया तो 16 लक्ष को मल्टीप्लाई करो उसको, इमेजिन। इसलिए आपको विनती कर रहे हैं, हाँ आपको क्यों बता रहे हैं सब, ये पता होने के बिना कैसे मालूम पड़ेगा आपको। अरे वो चर्चगेट में 1 पंजाबी ड्रेस पे 100 मिल रहे हैं, पता ही नहीं आपको, कैसे जाएंगे आप वहां पर। तो बताने वाला इंपॉर्टेंट है, भैया उधर चर्चगेट में स्टेशन के बाहर दुकान है, उधर बोर्ड लगा है उसमें 100 मिल रहे हैं, जाओ जल्दी तुरंत ले लो, तो ज्ञान मिलेगा तो भागेंगे ना आप, ज्ञान ही नहीं तो बैठे रहेंगे यहाँ पर 1 ही पंजाबी ड्रेस लेकर। इसलिए अधिक मास का व्रत करो, अधिक मास में व्रत लो, कोई कठिन व्रत लेने की जरूरत नहीं है, 1 माला करूंगी बस इतना भी व्रत काफी है। एक्स्ट्रा अगर आप 2 कर रहे हो 3 करूंगी, 16 कर रहे हो 18 करूंगी, इतना भी व्रत काफी है। 1 गीता का श्लोक पढ़ूंगा रोज, कितना लगता है, थोड़ा मोबाइल में देखना कम करूंगा और गीता में देखूंगा, हो सकता है ना। अरे चलते फिरते उठते बैठते रास्ते में आगे पीछे नहाते धोते भी मोबाइल चलते रहता है, मोबाइल काम करते हुए भी टॉवेल को उंगली पोंछ के ऐसे ऐसे करते रहते, किसका मैसेज आया, इतना उसमें अटैचमेंट है, इतना मन लगा हुआ है। तो मैं आपको विनती करता हूँ, ये सारे जो डिस्ट्रैक्शन है ना उसको छोड़कर इस महीने में समय दो भगवान के लिए, वो आपके अनंत काल के जन्म जन्मांतर के लिए काम आएगा, बचाएगा आपको, दुखों से बचाएगा, कष्टों से बचाएगा, यस पीड़ा से बचाएगा, जन्म जन्मांतर के मृत्यु से बचाएगा। तो आप लोग, मैं आपको हार्दिक विनती करता हूँ कि प्रयोजन इसका यही है, विशेष प्रभात जागृति, ये जागृति, वो संध्या जागृति, वो प्रेमांजलि, वो 50 नाम दिए हैं, पर्पज एक ही है उसका, आप लोगों का हम लोगों का भगवान के साथ में संबंध जुड़ जाए, इसी जन्म में कॉन्टैक्ट हो जाए, एक बार कनेक्टिविटी हो जाए और चालू हो जाए हमारा काम। इतना बड़ा मोबाइल ला के रखा 50,000 का, भाई कनेक्टिविटी नहीं उसके अंदर, सारा बेकार है वो कनेक्टिविटी के बिना, है ना। इतना बड़ा मोबाइल मनुष्य जीवन का आपको भगवान ने दिया है, उसमें सिम कार्ड डाल दो भगवान के संबंध का और चालू करो कनेक्शन, संपर्क करो उनसे और जुड़ जाओ, उसी के लिए जीवन है। तो ये मोबाइल वेस्ट हो जाएगा, एक दिन मट्टी में जाएगा, राख बन जाएगी उसकी, एक दिन गिदड़ खाएंगे उसको, वो तो है ही, लेकिन उसके पहले कॉन्टैक्ट कनेक्टिविटी बना दो भगवान के साथ। जितने भी मौके मिलते हैं ना, अधिक मास है, कार्तिक मास है, माघ मास है, चैत्र मास है, सब उसके लिए आप यूज करो टाइम का और जीवन को धन्य करो। एक बार सब लोग प्रेम से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ से उठने के पहले मन में संकल्प कर लो कि मुझे इस महीने में क्या करना है, किसी को अनाउंस करने की जरूरत नहीं, खुद के लिए संकल्प करो, 30 दिन पालन करो उसका, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे, निश्चिंत रहो, भगवान को भरोसा रखो, भगवान जो भी करते हैं वो चीटिंग नहीं करते, हमारे कल्याण के लिए काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरी बोल।